यरम्या अध्याय 25 पद 1। योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में हम अतीत में देखेंगे तो वहां सिदकिया से पूर्व यहोयाकीम के 11 वर्षीय राजकाल का विवरण दिया गया है। वो दुष्ट राजा योशिया का पुत्र था। उसने 31 वर्ष तक राज्य किया था। योशिया के 13वें वर्ष में परमेश्वर ने यरम्या को भविष्यवाणी की सेवा में बुलाया था। योशिया के मरने के 4 वर्ष बाद यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में। यरम्या अध्याय 25 पद 1। जो बाबुल के राजा नबुकदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, यरम्या अपनी इस भविष्यवाणी का समय बता रहा है। यरम्या अध्याय 25 पद 2। यहोवा का जो वचन यरम्या नबी के पास पहुंचा और जिसे यरम्या नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों से कहा। यरम्या की यह भविष्यवाणी सर्वथा अलग है जो उसने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों के लिए की थी। यहोवा का जो वचन यरम्या नबी के पास पहुंचा और जिसे यरम्या नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों से कहा। यरम्या अध्याय 25 पद 2 और 3। वो ये है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से। परमेश्वर ने यरम्या को योशिया के राज्य के 13वें वर्ष में बुलाया था। यरम्या को भविष्यवाणी करते हुए 23 वर्ष हो गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि इस भविष्यवाणी के समय यरम्या की आयु लगभग 40 वर्ष थी। यरम्या अध्याय 25 पद 3। यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुम से कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। यहोवा का संदेश सुनते सुनते यरम्या को 23 वर्ष हो गए थे, परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यरम्या अध्याय 25 पद 4 और 5। और यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद् वक्ताओं को भी ये कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे, परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया है। यरम्या कहता है, परमेश्वर की दृष्टि में उचित जीवन जियो और परमेश्वर की सेवा करो तो वो तुम्हें यही रहने देगा। यरम्या अध्याय 25 पद 6 से लेकर 11 तक। और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और ना अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि ना करूंगा। ये सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की ये वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बाबुल के राजा नबुकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और उन सबों को इस देश और उसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा, और इन सब देशों का सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यही वाणी है। और मैं ऐसा करूंगा कि इनमें ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और ना दुल्हे व दुल्हन का और ना चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा और ना इनमें दिया जलेगा। सारी जातियों का ये देश उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेंगी। यरमिया कह रहा है कि बाबुल में दासत्व का समय 70 वर्ष तक होगा। दानियल की पुस्तक के अध्याय 9 में दानियल कहता है कि भविष्यद् वक्ताओं की भविष्यवाणी पढ़ने के बाद उसने जान लिया था कि 70 वर्ष पूरे होने पर थे और उसने यहोवा से पूछा। निस्संदेह दानियल के पास यरमिया की भविष्यवाणियां थी और वह उन्हें पढ़ता था। इस भविष्यवाणी में यरमिया इन्हीं 70 वर्षों का उल्लेख करता है। दानियल जान चुका था कि 70 वर्ष पूरे होने पर है, अतः उसने परमेश्वर से पूछा कि उसके लिए परमेश्वर ने स्वदेश पलायन में कोई सेवकाई रखी है। इसराइल प्रतिज्ञा के देश में 490 वर्ष रहा, परंतु उन्होंने परमेश्वर के निर्देश अनुसार भूमि को प्रति 7वें वर्ष विश्राम नहीं दिया था। वे 6 वर्ष भूमि को जोत सकते थे, परंतु 7वें वर्ष उन्हें उसे ऐसा ही छोड़ देना था और जो कुछ भूमि अपने आप उपजाए उसे वे खा सकते थे। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें 70 वर्ष के लिए देश से बाहर कर दिया कि भूमि विश्राम पाए। आप परमेश्वर को वंचित करें ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर अपना भाग किसी न किसी प्रकार वसूल कर लेता है। इस तथ्य पर अवश्य ध्यान दें। मैंने कनाडा में देखा कि किसान अपनी भूमि को बाइबल के अनुसार 7वें वर्ष विश्राम देते हैं, परंतु भूमि फिर भी उन्हें बहुत उपज देती है। उनके अनुसार भूमि को विश्राम देना फसल के लिए बहुत अच्छा है। इसराइली लोग 490 वर्ष तक कनान में रहे, परंतु उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। उन्होंने खेती संबंधी सबत का पालन नहीं किया। उन्होंने 490 वर्ष तक देश को विश्राम नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अगर तुम विश्राम नहीं दोगे तो मैं विश्राम दूंगा। मैं इस देश से तुम्हें अलग कर दूंगा ताकि इस देश की भूमि को विश्राम मिले। उस विश्राम की भरपाई परमेश्वर ने एक साथ पूरी की। आपको याद रखने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को ठग नहीं सकते। जो परमेश्वर का है परमेश्वर उसे वसूल कर लेता है। यरमिया अध्याय 25 पद 12 से लेकर 14 तक। जब 70 वर्ष बीत चुके तब मैं बाबुल के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की ये वाणी है। और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। मैं उस देश में अपने वे सब वचन पूरा करूंगा जो मैंने उसके विषय में कहे हैं। और जितने वचन यरमिया ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके पुस्तक में लिखे हैं, क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे और मैं उनको उनकी करनी का फल भुगताऊंगा। परमेश्वर ने इसराइल को दंड देने के लिए बाबुल को साधन बनाया था, परंतु 70 वर्ष बाद बाबुल अपने इस अपराध के लिए परमेश्वर से दंड पाएगा। इस समय हम समय को पार करते हुए भावी महाक्लेश के युग में आते हैं। यरमिया अध्याय 25 पद 15। इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, मेरे हाथ से इस जल जलाहट के दाक मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं। देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 9-10। फिर इनके बाद एक और स्वर्ग दूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले तो वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा को जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्ग दूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। पद 19 और 20। और उस स्वर्ग दूत ने पृथ्वी पर अपना हसवा डाला और पृथ्वी की दाख लता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया और नगर के बाहर उस दाख के कुंड में दाख रौंदे गए और रस के कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यरमिया को क्रोध के कटोरे के बारे में पहले से ही बता दिया था। यरमिया अध्याय 25 पद 16 से 29 तक। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। सो मैंने यहोवा के हाथ से वो कटोरा लेकर उन सब जातियों को जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा पिला दिया, अर्थात यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासियों को और उनके राजाओं और हाकिमों को पिलाया, ताकि उनका देश उजाड़ हो जाए और लोग ताली बजाएं और उसकी उपमा देकर शाप दिया करें जैसा आजकल होता है। और मिस्र के राजा फिरौन और उसके कर्मचारियों हाकिमों और सारी प्रजा को और सब दो गले मनुष्यों की जातियों को और उस देश के सब राजाओं को और पलिस्तियों के देश के सब राजाओं को और अश्कलोन अजा और एक्रोन के और अश्दोद के बचे हुए लोगों को और एदोनियों मुआबियों और अमोनियों को और सारे राजाओं को और सिदोन के सब राजाओं को और समुद्र पार के देश के राजाओं को, फिर दादानियों तेमाइयों और बूजियों को और जितने अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं उन सबों को भी, और अरब के सब राजाओं को और जंगल में रहने वाले दोगले मनुष्यों के सब राजाओं को और जिमरी एलाम और मादे के सब राजाओं को और क्या निकट क्या दूर के उत्तर दिशा के सब राजाओं को एक संग पिलाया। निदान धरती भर में रहने वाले जगत के राज्यों के सब लोगों को मैंने पिलाया। और इन सब के पीछे शेशक जो बाबिलोन का दूसरा नाम के राजा को भी पीना पड़ेगा। तब तो उनसे ये कहना, सेनाओं का यहोवा जो इसराइल का परमेश्वर है यूं कहता है, पियो और मतवाले हो और उल्टी करो, गिर पड़ो और फिर कभी ना उठो, क्योंकि ये उस तलवार के कारण से होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा। और यदि वे तेरे हाथ से ये कटोरा लेकर पीने से इनकार करे तो उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुमको निश्चय पीना पड़ेगा। देखो, जो नगर मेरा कहलाता है मैं पहले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा। फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहर कर बचोगे? तुम निर्दोष ठहर कर ना बचोगे, क्योंकि मैं पृथ्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने पर हूं, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। महाक्लेश का समय। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर यरूशलेम को अपराध का दंड दे और हमें छोड़ दे? निश्चय ही हमारा अपराध यरूशलेम से कम नहीं। एक राष्ट्र जिसने परमेश्वर का त्याग कर दिया और विलासिता के पीछे भाग रहा है, उसने धार्मिकता का त्याग कर दिया। उनके न्यायपालिका में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को अनदेखा करते हैं। परमेश्वर का दंड संपूर्ण संसार पर आएगा। सेनाओं का यहोवा कहता है कि वो संसार के सब निवासियों पर तलवार उठाएगा। यरमिया अध्याय 25 पद 30 और 31। इतनी बातें भविष्यवाणी की रीति पर उनसे कहकर ये भी कहना, यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपनी उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वो अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा, वो पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लताड़ने वाले की नाई ललकारेगा। पृथ्वी की छोर लो भी कोलाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है। वो सब मनुष्यों से वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। इस पर विशेष ध्यान दे, वो दुष्टों को तलवार के लिए रख छोड़ेगा, परंतु वे जो मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा धर्मी गिने जाते हैं, उनका क्या होगा? आपको ध्यान होगा कि जब परमेश्वर के दूत सदोम और अमोरा का नाश करने आए थे, तब इब्राहिम ने उन्हें रोका और भोजन के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे इब्राहिम पर प्रकट करेंगे कि वे क्या करने आए हैं। वे सदोम और अमोरा को उनके पाप के कारण नाश करने आए थे। इब्राहिम ने कहा कि क्या परमेश्वर निष्पक्ष नहीं है? यदि वहां धर्मी जन हुए तो क्या पृथ्वी का स्वामी न्यायप्रिय नहीं है? अधर्मियों के साथ धर्मियों का नाश न्याय नहीं? इब्राहिम ने कहा कि 50 धर्मी जन हो तो? उन्होंने कहा कि वे उन नगरों का नाश नहीं करेंगे। संख्या घटते घटते 10 तक आ गई, अर्थात यदि 10 धर्मी जन हुए तो भी उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। यीशु ने कहा था, तुम पृथ्वी का नमक हो, लोग आपका टट्ठा करें, आपकी हंसी करें, परंतु उन्हें आपका आभारी होना है कि आप नहीं होते तो विनाश हो जाता। पृथ्वी का ये नमक सुरक्षा प्रदान करता है। स्वर्गदूत सदोम आया, परंतु उसे केवल एक ही धर्मी जन मिला। स्वर्गदूत ने उससे कहा, यहां से शीघ्र निकल जा और मुड़कर मत देखना, हम इस नगर का नाश करने वाले हैं। पत्रस ने लूत का संदर्भ देते हुए कहा कि कलीसिया महाक्लेश में नहीं रहेगी। दूसरा पत्रस 2:9। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। यहां परमेश्वर महाक्लेश का वर्णन करते हुए कहता है कि वो सब दुष्टों पर तलवार उठाएगा, परंतु प्रभु में धर्मी जनों को वो कलीसिया के उठाए जाने पर ले जाएगा। यरमिया अध्याय 25 पद 32 और 33। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुओं की लोथें पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक पड़ी रहेगी। तलवार से घात किए जाने वाले पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक होंगे। यरमिया अध्याय 25 पद 33 से लेकर 38 तक। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना रहेगा और उनकी लोथें ना तो बटोरी जाएगी और ना कब्रों में रखी जाएगी। वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़ी रहेंगी। हे चरवाहों, हाय हाय करो और चिल्लाओ, हे बलवंत मेड़ों और बकरों, राख में लोटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुंचे हैं। और मैं मन भाव बर्तन की नाई तुम्हारा सत्यनाश करूंगा। उस समय ना तो चरवाहों के भागने के लिए कोई स्थान रहेगा और ना बलवंत मेड़े और बकरे भागने पाएंगे। चरवाहों की चिल्लाहट और बलवंत मेड़ों और बकरों के मिमियाने का शब्द सुनाई पड़ता है, क्योंकि यहोवा उनकी चराई को नाश करेगा और यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण शांति के स्थान नष्ट हो जाएंगे। जिन वास स्थानों में अब शांति है वे नष्ट हो जाएंगे। युवा सिम की नाई वे अपने ठौर को छोड़कर निकलता है, क्योंकि अंधेर करने हारी तलवार और उसके भड़के हुए कोप के कारण उनका देश उजाड़ हो गया है। महाक्लेश पृथ्वी पर परमेश्वर के दंड का समय होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कलीसिया को अर्थात हमें उस आतंक और आक्रोश का सामना नहीं करना होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6:18 पद इस 3.5 वर्ष के युग का तस्वीर का वर्णन करता है। इसे आप अवश्य पढ़े। हे पिता, हम एक बार फिर तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमें यहां एकत्र होने का और तेरे बारे में सीखने का तथा पवित्र आत्मा द्वारा हमारे मन और जीवन को तेरे वचन से भेद कर अंतर्दृष्टि पाने का अवसर मिला। हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं तो तू हमारी सहायता कर कि हम पवित्र आत्मा के प्रकाशन को भूल न जाएं। प्रभु, हम निश्चय ही शरीर के मार्ग को त्याग कर आत्मा के पीछे चले और धार्मिकता का पालन करके तेरा अनुसरण करें और तेरी सेवा करें, तुझसे प्रेम रखें। इसलिए हे पिता, यीशु के नाम में तेरा आत्मा हमारे हृदयों में तेरा सत्य अंकित कर दे। हम इसके लिए तेरे कृतज्ञ हैं। आमीन।